नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गिरीश बोबना। गिरीश जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। अनाहत सिंह ने इंडियन ओपन स्क्वैश के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। अभय सिंह का मुकाबला वीर चोटरानी से जारी। हरियाणा ने राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 95 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 19 रन से हराकर श्रृंखला बराबर की और आर्मन डुप्लांटिस ने पोल वॉल्ट का खिताब अपने नाम किया। चर्चा की शुरुआत करते स्क्वैश से, अनाहत सिंह ने इंडियन ओपन स्क्वैश के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। मुंबई में फाइनल मुकाबले में अनाहत ने हना मोहताज को 3-1 से हराया। अनाहत ने तन्वी खन्ना को और हना ने नादियन एहलमामी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। बेहतरीन प्रदर्शन किया अनाहत ने और लगातार अच्छा प्रदर्शन उनका जारी है। इस आज के मुकाबले की भी बात करें तो वन साइडेड ही बिल्कुल कर दिया है। 11-6, 11-5, फिर 9-11 और लास्ट में 11-6 करके जीता।
हाँ, एक गेम में बेशक तीसरा वाला जो 9-11 से गवाया
जी।
तो हना मोहताज इजिप्ट की खिलाड़ी, आप देखें कि और जो वो भी एक सीरियड खिलाड़ी थी
जी।
और काफी उन्होंने अच्छे अच्छे मैचेस जीते हैं और माना जा रहा था कि हालांकि अनहत का जो उनसे स्ट्रेंथ था वो ज्यादा मजबूत था
जी।
और इस लिहाज से आप देखें तो इस कल उन्होंने तन्वी खन्ना को हराया
जी।
और मैं राउंड राउंड की बात करूं प्रशांत, तो पहले राउंड में उनको बाई मिला अनहत को, फिर उसके दूसरे राउंड में उन्होंने फरीदा वालिद जो इजिप्ट की थी उनको सीधे गेम में हराया 11-6, 11-9 और 11-5 से
जी।
फिर क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला हुआ मलेशिया की खिलाड़ी सिवित्रा कुमार से, जिनको उन्होंने 11-2, 11-6, 11-4 से हराया। यहां भी सीधे गेम में उन्होंने जीता। हालांकि सेमीफाइनल में आप देखें वहां पर तन्वी खन्ना के साथ उनका कल मुकाबला था, जहां पर पहली बार उन्होंने गेम जो है वो गंवाना पड़ा। पहला गेम उन्होंने 11-6 से जीता, उसके बाद तन्वी ने वापसी की 11-9 से। तन्वी ने जीता 9-11 से, आप कहें तो अनहत वो मैच गेम हार गई। उसके बाद उन्होंने वापसी की 11-8 और 11-2 से, फिर हराया। और दूसरी तरह मैं हना मोहताज की बात करूं तो उनका गेम देखें तो वो भी काफी ऐसा ही रहा कि पहला राउंड जो है बाई में गया, फिर उसके सेकंड राउंड में उन्होंने स्पेन की सोफिया मताओ को 11-7, 11-6, 11-4 से हराया
जी।
लेकिन अब बात करते हैं जब मलेशिया की खिलाड़ी यशमिता जगदीश कुमार के साथ क्वार्टर फाइनल में जब वो भिड़ी तो उनके लिए वो मुकाबला एक तरफा नहीं रहा, जहां पर उन्होंने जीत 3-2 से उनके पक्ष में गई। इसका मतलब यह था, मैं ये सारे आंकड़े इसलिए दे रहा हूं
जी,
कि अनहत के पास एक टैक्टिकल मूव था कि वो कहां जो है उनकी कमियां है, हना कहां पर जो है वो गड़बड़ी कर रही है, उससे इस मुकाबले में उन्होंने देखे, उसकी गेम रीडिंग हुई। 3-2 से जब वो मुकाबला जीता तो वो काफी एक तरफा नहीं था। 11-8, 8-11, 7-11, 11-7, 11-8 से उन्होंने जीता
जी।
और फिर सेमीफाइनल में भी अगर आप देखें तो इजिप्ट की नादियन एलमनी वही है जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में ज्योत्सना चिन्नप्पा को हराया था। तो उसको हरा के फाइनल में पहुंची 11-8, 5-11, 11-5, 11-7। आप देखें तो अनहत ने सिर्फ अब तक एक गेम गिराया है, इन्होंने सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में लगभग 3 गेम गिराए। तो इस वजह से एक तो टैक्टिकल मूव और उनकी जो खासियत है जो वो रैलीज जो है वो बिल्ड करती है, वो प्लान करती है कैसे रैली को बढ़ाया जाए, कहां पर फिर वो एक गेम को स्लो करना है या फास्ट करना है उस अंतराल पे जाके, और फिर वेरिएशन पेस और एंगल्स को वो ध्यान में रख के वो गेम खेलती है। अब जो अनहत है, पहले वो हालांकि 2022 आप राष्ट्रमंडल गेम देखें और 14 साल की उम्र से उनका एक करियर ग्राफ चल रहा है, सभी भारतीय उनके बारे में बात कर रहे हैं कि एक जो उभरती हुई वो स्क्वैश खिलाड़ी है, तो उसकी भी एक जर्नी रही है
जी।
वो जर्नी ये है कि पहले वो बैडमिंटन खेलती थी, पीवी सिंधु से काफी इंस्पायर्ड थी और उनके जीवन में जो मोड़ आया, उनकी सिस्टर है अमायरा
जी,
वो स्क्वैश खेलती थी
जी।
तो उनको रुझान हुआ अब स्क्वैश खेलने का। तो फिर पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा हुआ कि दो बहनों को अलग अलग स्पोर्ट्स में ना जाना पड़े, एक ही स्पोर्ट्स में दिया उन्होंने। और फिर अमायरा ने काफी उनके स्पोर्ट्स पे काम किया। पहले एक दो साल जब वो स्क्वैश खेला उन्होंने तो वो बैडमिंटन भी खेल रही थी, और खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में हमारे साथ बातचीत में बताया कि जो बैडमिंटन उन्होंने शुरुआत की उसका फायदा उनको स्क्वैश में मिला, जो काफी जो वॉली वगैरह है लगाने में वो वहां पर काफी उनको मदद मिलती है। और मुझे लगता है कि और एक सबसे बड़ी बात आप देखें कि टॉप 20 में शामिल है। पिछले साल हम बात कर रहे थे कि टॉप 30 में है, इस बार हम बात कर रहे हैं कि वो टॉप 20 में है, तो काफी बड़ा। और वर्ल्ड नंबर 7 एक समय कैनेडा की टिनी यिलिस थी, उसको उनको हरा चुकी है
जी।
तो मतलब टॉप 20 में आना, वर्ल्ड नंबर 7 को हराना, तो इनको इसलिए एक अब आने वाले ओलंपिक्स में भी इसको शामिल किया गया है, तो एक उम्मीद तो भारत की जगती है यहाँ पर
जी। बिल्कुल। और वहीं पुरुष वर्ग में अभय सिंह का भी मुकाबला भारत के ही वीर चोटरानी से जारी है, और ताजा समाचार मिलने तक अभय ने 2-0 की बढ़त बना ली, अच्छा प्रदर्शन, और ऐसा लग रहा है कि ये भी जीत जाएंगे खिताब।
बिल्कुल। और बेसिकली खैर या तो इंडिया वर्सेस इंडिया है, तो सबसे पहले हमारे दोनों मेडल जो गोल्ड मेडल है वो इंडिया के पक्ष में, लेकिन अभय और वीर चोटरानी का जो मुकाबला देखेंगे, मैं यहाँ पर अभय का इसलिए 15 भारी है कि वर्ल्ड रैंकिंग में वो बेस्ट एक समय 29 थे, अभी 26 पे थे कि 29 पे है, और वही वीर चोटरानी वर्ल्ड रैंकिंग में 49 पे है, तो राइजिंग प्लेयर है स्लाइटली। थोड़ा सा उनका जो जो गेम है वो अभी कंसिस्टेंसी जो होती है उसको बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन अभय ऑलरेडी एशियन गेम्स में कमाल दिखा चुके हैं और परिपक्व खिलाड़ी है, तो इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूं कि मुकाबला अभय के पक्ष में ही जाएगा
जी। बात कर लेते हैं एथलेटिक्स पर। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा ने 95 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। ये प्रतियोगिता 17 से 21 मार्च तक ओडिशा में आयोजित की गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
हरियाणा ने 39 स्वर्ण, 31 रजत और 25 कांस्य पदक जीते। वहीं तमिलनाडु कुल 51 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 14 स्वर्ण, 20 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल थे। गुजरात ने 14 स्वर्ण, 11 रजत और 5 कांस्य से 30 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। मेजबान राज्य ओडिशा कुल 17 पदकों के साथ 9वें स्थान पर रहा, जिसमें 5 स्वर्ण पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों के साथ सीमा सुरक्षा बल और सेना खेल नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 1460 पैरा एथलीटों ने हिस्सा लिया। पुरुषों की चक्का फेंक F11 स्पर्धा में हरियाणा के मोनू घांगस ने स्वर्ण, राजस्थान के प्रवीण शर्मा ने रजत और आंध्र प्रदेश के नीलम संजय रेड्डी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं F51, F52 और F53 स्पर्धा में उत्तर प्रदेश के राम रतन सिंह ने स्वर्ण, हरियाणा के प्रणव सूरमा ने रजत और धर्मवीर ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की लंबी कूद T11 और T12 स्पर्धा में गुजरात की दामोर तेजल बेन अमराजी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओडिशा की जानकी ओराम दूसरे और दिल्ली की शिवानी त्यागी तीसरे स्थान पर रही। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
वहीं इंडियन ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता के 400 मीटर स्पर्धा में तमिलनाडु के राजेश रमेश ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
तमिलनाडु के राजेश रमेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की ए स्पर्धा में 400 मीटर का स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा कायम किया। पुरुषों के फाइनल रेस को 3 श्रेणियों ए, बी और सी में बांटा गया था। एनसीओई त्रिवेंद्रम के मनु टीएस ने रेस ए में 45.96 सेकंड के समय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि दिल्ली के अमोद जैकब ने रेस सी में 45.99 सेकंड का समय लेकर जीत हासिल की और पुरुषों के वर्ग में कुल मिलाकर तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं महिलाओं की फाइनल दौड़ 2 श्रेणियों ए और बी में आयोजित की गई। तमिलनाडु की विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ श्रेणी ए में 53.31 सेकंड के साथ जीत हासिल की। JSW की रशदीप कौर 53.62 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पे रही। कर्नाटक की विजय कुमारी जीके ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर 20 में पुरुषों की 400 मीटर दौड़ बिहार के पीयूष राज ने, जबकि महिलाओं के वर्ग में उत्तर प्रदेश की रेशमा ने जीती। अंडर 18 वर्ग में पुरुषों में कर्नाटक के सैयद साबिर और महिलाओं में महाराष्ट्र की कशिश भगत ने पहला स्थान हासिल किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स हो या फिर इंडियन ओपन हो, जो खिलाड़ी हैं भारतीय खिलाड़ियों का डोमिनेंस लगातार जारी है।
बिल्कुल, राजेश रमेश की आपने बात की या फिर आपने हरियाणा पैरा एथलेटिक्स की बात की, करीब 1500 से लगभग जो विभिन्न राज्यों से आए हुए खिलाड़ी थे, तो एक तरह से जो राष्ट्रीय मंच है ये जो इवेंट्स होते हैं वो राष्ट्रीय मंच और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए काफी कारगर साबित होते हैं और एक सीढ़ी दर सीढ़ी और ये काफी जो है मेन स्ट्रीम में भी लाने के लिए, इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार काफी इनके साथ अच्छा जो इनकी फैसिलिटीज दे रही है। और आप देखें अब तो पैरालंपिक्स में भी हमारे गोल्ड मेडल और कितने सारे मेडल आ रहे हैं, तो वो तभी आ रहे हैं कि जब आपका ग्रास रूट मजबूत होगा और ये ग्रास रूट जो है वो आपको मेडल पे ही जो है कन्वर्ट करती है।
आर्मंड डुप्लांटिस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पोल वॉल्ट में एक और विश्व खिताब अपने नाम किया। आर्मंड ने फाइनल मुकाबले में एमानुएल कारालिस को हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
ड्यूप्लांटिस ने 6.25 मीटर की कूद लगाकर लगातार चौथी बार विश्व इंडोर चैंपियनशिप जीत ली है। आर्मंड और कारालिस के अलावा अन्य खिलाड़ी 6.05 मीटर तक नहीं पहुंच पाए। ड्यूप्लांटिस ने 6.10, 6.15 और 6.25 मीटर कूद लगाई। कारालिस ने 6.10, 6.15 मीटर की लंबाई सफलतापूर्वक पार की, लेकिन 6.25 मीटर पर अपने प्रयास में चूक गए और लगातार दूसरे वर्ष उपविजेता बने। ड्यूप्लांटिस ने अपने 6.31 मीटर के उस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास नहीं किया जो उन्होंने पिछले सप्ताह स्वीडन के मोंडो क्लासिक प्रतियोगिता में बनाया था। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
2028 में भुवनेश्वर जो है वो एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, तो उम्मीद की जाए कि खिलाड़ी इसमें आकर परफॉर्मेंस देंगे।
मुझे तो मैं देखना चाहूंगा, और जब घोषणा हुई थी 19 तारीख को कि भारत को ये ऐतिहासिक पल मिलेगा 2028 का, और हालांकि ये ओलंपिक साल भी है, तो डुप्लांटिस आते हैं कि नहीं आते हैं ये सबसे बड़ा सवाल होगा, लेकिन अगर आते हैं तो एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन होगा। आप ये समझे कि 23 गोल्ड मेडल है विभिन्न जो इवेंट आप देखें ओलंपिक गेम्स में, टोक्यो में और पेरिस में उन्होंने गोल्ड जीता पोल वर्ल्ड, इसके पहले सर्गेई बुबका का नाम आता था, अब डुप्लांटिस का नाम आता है, क्या नहीं है उनका डेकोरेटेड एक जो फेरिस्त है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल, वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप जो अभी कर रहे हैं उसमें 4 गोल्ड मेडल और डायमंड लीग में 5, कुल मिला के ऐसे एक फेरिस्त है। और डुप्लांटिस उड़ीसा आते हैं, भारत की जमीन पर आते हैं, तो मैं तो कम से कम मुझे लगता है कि मैं देखने जाऊंगा उनको।
जी बिल्कुल। दिल्ली में आज सुबह फिटनेस और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 66वें संस्करण में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
इस बार कार्यक्रम का विषय प्रकृति के रक्षक था। इसमें वर्दी पहने वन रक्षक साइकिलों पर सवार होकर इंडिया गेट से गुजरे, जो इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा। कार्यक्रम की शुरुआत मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से हुई, जहां सेना के बैंड ने देशभक्ति की धुनें बजाई और शंखनाद के साथ साइकिल रैली को झंडी दिखाई। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को फिटनेस के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय ने मिलकर सहयोग किया। इस साइकिल रैली में 500 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। साइकिलिंग शुरू होने से पहले प्रतिभागियों ने जुम्बा, योग और रस्सी कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर प्रथम PSPB फिट इंडिया साइक्लोथोन का भी आयोजन किया गया। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
कर लेते हैं क्रिकेट पर। चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 19 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट पर 164 रन बनाए थे। बताओ, आपको बता दें कि अभय सिंह ने मेन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है।
11-9, 11-8, 11-4 से उन्होंने जीतकर अपने नाम स्वर्ण पदक हासिल किया है।
जी, और दोनों ही वर्ग में अगर हम बात करें तो महिला हो या फिर पुरुष, जैसा आप बता भी रहे थे कि भारत का दबदबा रहा।
बिल्कुल दबदबा रहा, और आगे आने वाले मुकाबले में ये काफी कारगर होगा प्रशांत
जी। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। गिरीश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।